ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वातावरणीय अध्ययन करके ही पत्थर, बजरी और बालू का संकरण और उत्खनन करने का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का आग्रह। सरकार द्वारा घोषित सूचना प्रविधि दशक को सफल बनाने के हिसाब से योजना तैयार करने का माथहत के निकायों को संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का निर्देश। दूध व्यवसायी किसानों ने बकाया रकम जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की सरकार से की मांग। और भारतीय राज्य बिहार की राजधानी पटना के पास बढ़ इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की स्थिति अज्ञात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि चुरे क्षेत्र के संरक्षण के लिए तीनों तहों की सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदाय और सरोकार वाले निकायों का समन्वय, सहकार्य और संयुक्त प्रयास अपरिहार्य है। आज 10वें चुरे संरक्षण दिवस के संदर्भ में आयोजित वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि तराई मधेश की बहुसंख्यक जनता की जीवन रेखा से जुड़ा चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय और बहुसरोकार का विषय है। ये बताते हुए कि विक्रम संवत 2074 में स्वीकृत 20 वर्षीय चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना को परिमार्जन सहित लागू करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुरे संरक्षण के लिए अलग आईन की जरूरत महसूस हो रही है और इसके लिए सरकार आवश्यक समन्वय कर रही है। उन्होंने संबंधित सभी से वातावरणीय अध्ययन करके ही पत्थर, बजरी और बालू का संकलन और उत्खनन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के साथ आज चीनी जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन सीसीपीसीसी के उपाध्यक्ष बातेर ने मुलाकात की। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई मुलाकात में उनके बीच द्विपक्षीय संबंध, आपसी सहयोग और दो देशों के बीच हुए विभिन्न समझौतों और सहमतियों के क्रियान्वयन के विषय में विचार विमर्श हुआ। मौके पर प्रधानमंत्री प्रचंड ने यह कहते हुए खुशी जाहिर की कि अपने पिछले चीन दौरे के दरमियान हुए समझौते क्रमशः क्रियान्वित हो रहे हैं, साथ ही अन्य समझौते भी धीरे धीरे क्रियान्वित होने का विश्वास जताया। बातचीत में उपाध्यक्ष बातेर ने कहा कि चीन नेपाल के साथ संबंधों को उच्च महत्व देता आ रहा है और आने वाले दिनों में भी इसमें प्रगाढ़ता बढ़ेगी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय से संबंधित शीर्षकों पर बहस हुई। बहस में सांसदों ने बजट निर्माण के पुराने ढांचे में परिमार्जन कर बजट में नीतिगत और संरचनागत सुधार करने को जरूरी बताया। इससे पूर्व बैठक में उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आईनों को संशोधित करने वाले विधेयक 2081 को प्रस्तुत किया था। विधेयक प्रस्तुत करते हुए मंत्री भंडारी ने बताया कि नेपाल में निवेश का वातावरण बनाने के लिए नीतिगत सुधार के उद्देश्य से अध्यादेश द्वारा कानून लाया गया था और उसी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आईनों को संशोधित करने वाला विधेयक लाया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 4 गते मंगलवार के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल जर्मनी के औपचारिक दौरे के लिए जिनेवा से बर्लिन पहुंचे। अपने जर्मन समकक्षी फ्रैंक वाल्टर श्टाइनमायर के मैत्रीपूर्ण नियोते पर वहां पहुंचे राष्ट्रपति पोडेल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का कल बर्लिन ब्रांडेनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर जर्मनी के लिए नेपाली राजदूत रामकाजी खड्गा और जर्मन राष्ट्रपति के संघीय विदेश संबंध कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने स्वागत किया था। ये जानकारी बर्लिन स्थित नेपाली राजदूतावास ने दी। संवैधानिक परिषद की बैठक ने निर्वाचन आयोग के रिक्त आयुक्त पद पर कृष्णमान प्रधान की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज शाम हुई परिषद की बैठक ने प्रधान को निर्वाचन आयुक्त पद पर सिफारिश करने का निर्णय किया। ये जानकारी प्रतिनिधि सभा की उपसभामुख इंदिरा राणा ने दी। निर्वाचन आयुक्त पद पर सिफारिश हुए प्रधान नेपाल कानून समाज के कार्यकारी निदेशक हैं और अब संसदीय सुनवाई के बाद उन्हें आयुक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि रीत बहादुर खड़का क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। शहीद रीत बहादुर खड़का के स्मृति दिवस के अवसर पर आज नेकपा माओवादी केन्द्र के पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने यह बात कही। ये कहते हुए कि शहीद खड़का के जीवन से निष्ठा की प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश और पार्टी हमेशा स्मरण करते रहेंगे। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। दूध व्यवसायी किसानों ने राज्य द्वारा संचालित दुग्ध विकास संस्थान और निजी क्षेत्र के डेयरी उद्योगों पर 6 माह की बकाया रकम जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। नेपाल किसान महासंघ ने विभिन्न 8 सूत्रीय मांग सहित प्रधानमंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपा। प्रमुख जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड को सौंपे गए ज्ञापन पत्र में किसानों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि दूध उत्पादक किसानों को 4 अरब रुपए भुगतान करना बाकी है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने सरकार द्वारा प्रस्तावित सूचना प्रविधि दशक को सफल बनाने के लिए योजना तैयार करने का संबंधित निकायों को निर्देश किया। आज मंत्रालय में संबंधित निकायों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में संचार मंत्री शर्मा ने कहा कि सूचना प्रविधि दशक के प्रस्ताव को देश की रूपांतरणकारी परियोजना के रूप में सामने रखा गया है और इसे सफल बनाने के लिए कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आंतरिक योजनाएं बनाते समय सूचना प्रविधि दशक पर ध्यान केन्द्रित करने का सभी निकायों को निर्देश किया। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि श्रावण से डिमांड वेरिफिकेशन को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में आज पदभार संभालने के 100 दिनों का प्रगति विवरण साझा करते हुए मंत्री अर्याल ने बताया कि 1 घंटे के भीतर श्रम स्वीकृति देने सहित महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मंत्री अर्याल ने कहा कि श्रम स्वीकृति के लिए निर्धारित कोटे को हटाकर 24 घंटे आवेदन दे पाने, श्रमाधान कॉल सेंटर, श्रमाधान अभियान लगात व्यवस्था की गई है। मंत्री अर्याल ने यह भी बताया कि वे श्रमिकों की समस्याओं को समझने के लिए नियमित वर्चुअल बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय सभा विधान व्यवस्थापन समिति ने मीडिया काउंसिल विधेयक के संबंध में प्रेस काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। आज समिति के विचार विमर्श में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष बालकृष्ण बसनेत ने कहा कि सरकार ने नाम मात्र परिवर्तन करने के हिसाब से मीडिया काउंसिल विधेयक लाया है, लेकिन अब गठन होने वाली मीडिया काउंसिल स्वायत्त होनी चाहिए। बैठक में समिति के सांसदों ने संविधान द्वारा प्राप्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के हक के विरूद्व कोई भी आईन कानून न बनाने के जिक्र के साथ कहा कि पत्रकारों के लिए भी निश्चित शैक्षिक योग्यता तय करके ही पत्रकारिता अनुमति पत्र लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए और मीडिया काउंसिल को स्वतंत्र निकाय के रूप में ले जाने के हिसाब से विधेयक को संशोधित किया जाना चाहिए। पांचथर की यांगवरख गांवपालिका में भारी बारिश के साथ आए भूस्खलन के कारण वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के 60 परिवार विस्थापित हो गए हैं। बाढ़ से यांगवरख 3 के फलाम नदी और ओयाम नदी के 2 मोटरेबल पुल बह गए और यांगवरख वार्ड नंबर 2 रिजाल पहाड़ में हुए भूस्खलन के कारण मध्य पहाड़ी राजमार्ग अवरुद्ध बना हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य बिहार की राजधानी पटना के पास बढ़ इलाके में गंगा नदी में एक नाव पलट गई है। नाव में 17 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोग सुरक्षित हैं जबकि 6 लोग लापता हैं। बढ़ के एसडीएम शुभम कुमार ने इस बात की जानकारी दी। शुभम कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि यह हादसा नाव पलटने की वजह से हुआ है। अभी तक जो कन्फर्म हुआ है उसके मुताबिक नाव में 17 लोग थे, 11 लोग बहकर बाहर निकल गए हैं और 6 लोग लापता हैं। एसटीआरएफ की टीम बचाव अभियान के लिए निकल चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वातावरणीय अध्ययन करके ही पत्थर, बजरी और बालू का संकलन और उत्खनन करने का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का आग्रह। सरकार द्वारा घोषित सूचना प्रविधि दशक को सफल बनाने के हिसाब से योजना तैयार करने का माथहत के निकायों को संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का निर्देश। दूध व्यवसायी किसानों ने बकाया रकम जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की सरकार से की मांग। और भारतीय राज्य बिहार की राजधानी पटना के पास बढ़ इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की स्थिति अज्ञात। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।